एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम सबों को तू ग्रहण कर, तेरे आत्मा से भर दे और तेरे राह में चलने के लिए हमें मदद कर, हमें आत्मिक बुद्धि और ज्ञान दे और तेरे नजदीक ला। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि मैं तेरे वचनों को तेरे लोगों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है खोया और पाया गया भाग दो। उड़ान पुत्र की खोया और पाया गया दृष्टांत में कोई ताना नहीं है, ना ही उड़ा पुत्र को उसके बुरे मार्ग के लिए दोषी ठहराया गया है। बेटे को लगता है कि अतीत को माफ कर दिया गया है और भुला दिया गया है, हमेशा के लिए मिटा दिया गया है, और इसलिए परमेश्वर पापी से कहता है, मैंने तेरे अपराधों को और तेरे पापों को एक घने बादल के समान मिटा दिया है। यशायाह 44:22 में, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और मैं उनका पाप फिर कभी ना स्मरण करूंगा। यिर्मयाह 31:34, दुष्ट अपना मार्ग और अधर्मी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यह प्रतिज्ञा हम परमेश्वर का पाते हैं यशायाह 55:7 में। उन दिनों में और उस समय में यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल का अधम ढूंढने पर भी ना मिलेगा और यहूदा के पाप ढूंढने पर भी ना मिलेंगे। यह प्रतिज्ञा यिर्मयाह 50:20 में मिलता है। यहाँ पर पश्चाताप करने वाले पापी को स्वीकार करने की परमेश्वर की इच्छा का क्या बड़ा आश्वासन है। क्या आपने अपना रास्ता खुद चुना है? क्या आप परमेश्वर से बहुत दूर भटक गए हैं? क्या आपने अपराध के फल खाने की कोशिश की है केवल यह देखने के लिए कि वे आपके होठों पर राख बन गए हैं और अब आपकी संपत्ति खर्च हो गई है, आपकी जीवन योजनाएं विफल हो गई हैं और आपकी आशाएं मर गई हैं, क्या आप अकेले और उदास बैठे हैं? अब वह आवाज जो लंबे समय से आपके दिल से बोल रही थी लेकिन जिसे आप सुनना नहीं चाहते थे, वह आपके पास स्पष्ट और स्पष्ट रूप से आती है। उठो और चले आओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम नहीं है, क्योंकि यह अशुद्ध है, यह तुम्हें नष्ट कर देगा, हाँ बहुत विनाश के साथ। मीका 2:10। अपने पिता के घर लौट आइए, वह तुम्हें आमंत्रित करते हुए कहता है, मेरे पास लौट आओ क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। यशाया 44:22। शत्रु की सलाह पर ध्यान मत दीजिए कि जब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना लेते तब तक मसीह से दूर रहें। जब तक आप परमेश्वर के पास आने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हो जाते, यदि आप तब तक प्रतीक्षा तब तक रुके रहेंगे तब आप कभी नहीं आ पाएंगे। जब शैतान आपके गंदे कपड़ों की ओर इशारा करता है तो यीशु के वादे को दोहराइए जो कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी भी तरह से बाहर नहीं निकालूंगा। यूहन्ना 6:37। दुश्मन को बताइए कि यीशु मसीह का खून सभी पापों को शुद्ध करता है। दाऊद की प्रार्थना को अपना बनाइए, मुझे जुफा से शुद्ध कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धोइए और मैं बर्फ से भी अधिक सफेद हो जाऊंगा। भजन संहिता 51:7। उठो और अपने पिता के पास आओ, वह तुम्हें बहुत दूर से मिलेगा। यदि तुम पश्चाताप में उसकी ओर एक कदम भी बढ़ते हो तो वह तुम्हें अपने असीम प्रेम की बाहों में समेटने के लिए तत्पर हो जाएगा। उसके कान पश्चातापी आत्मा की पुकार सुनने के लिए खुले हैं। परमेश्वर के जाने के बाद हृदय से निकलने वाली पहली पुकार उसे पता चल जाती है। कोई भी प्रार्थना चाहे वह कितनी भी लड़खड़ाती हुई क्यों ना हो, कोई भी आंसू बहाया जाना चाहे वह कितना भी गुप्त क्यों ना हो, कोई भी परमेश्वर के लिए सच्ची इच्छा की जाना चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, परमेश्वर की आत्मा से छुए जाने से दूर नहीं है। और जिसे परमेश्वर का आत्मा पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, प्रार्थना के उच्चारण या हृदय की तड़प को जाहिर करने से पहले ही मसीह की कृपा उस कृपा से मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं जो मानव आत्मा पर काम कर रही हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता पाप से अशुद्ध हुए वस्त्र तुमसे ले लेगा। जकरिया की सुंदर दृष्टांतमक भविष्यवाणी में महायाजक यहोशु प्रभु के दूत के सामने मैले वस्त्र पहने खड़ा है और उससे उसने कहा, देख मैंने तेरा अधम दूर कर दिया है और मैं तुझे दूसरा वस्त्र पहनाता हूँ। तब उन्होंने उसके सिर पर सुंदर पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। जकरिया 3:4-5। इसी प्रकार परमेश्वर आपको उद्धार के वस्त्र पहनाएगा और धार्मिकता का लबादा ओढ़ाएगा। यशाया 61:10। चाहे तुम बर्तनों के बीच लेटे रहो तो भी तुम कबूतर के समान होगे जिसके पंख चांदी से और उसके पंख सोने से मढ़े हुए हों। भजन में मिलता है, अब तक उद्धारकर्ता के दृष्टांत में खुशी के दृश्य की सामंजस्यता को बिगाड़ने के लिए कोई असंगत स्वर नहीं है, लेकिन अब मसीह एक और तत्व प्रस्तुत करते हैं। जब उड़ाव पुत्र घर आया तो बड़ा बेटा खेत में था और जब वह आया और घर के पास पहुंचा तो उसने संगीत और नृत्य सुना और उसने एक नौकर को बुलाया और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने मोटा बछड़ा कटवाया है क्योंकि उसने उसे सुरक्षित और स्वस्थ पाया है। अब वह क्रोधित हो गया और अंदर नहीं जाना चाहता था। यह बड़ा भाई अपने पिता की चिंता में भागीदार नहीं रहा है और खोए हुए व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए वह भटके हुए व्यक्ति के लौटने पर पिता की खुशी में भागीदार नहीं है। खुशी की आवाजें उसके दिल में कोई खुशी नहीं जगाती हैं। वह नौकर से उत्सव का कारण पूछता है और जवाब से उसकी ईर्ष्या भड़क उठती है। वह अपने खोए हुए भाई का स्वागत करने के लिए अंदर नहीं जाता है। उड़ाव पुत्र को दिखाया गया अनुग्रह वह खुद का अपमान समझता है। जब पिता उससे बहस करने के लिए बाहर आता है तो उसके स्वभाव का घमंड और दुष्टता प्रकट होती है। वह अपने पिता के घर में अपने जीवन को एक अप्रतिदेय सेवा के दौर के रूप में देखता है और फिर बेटे को दिए गए उपकार को नीच तुलना में रखता है। वह यह स्पष्ट करता है कि उसकी खुद की सेवा एक नौकर की तरह थी, ना कि एक बेटे की तरह। जब उसे अपने पिता की मौजूदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए था, तब उसका मन अपने सावधान जीवन से मिलने वाले लाभ पर टिका रहा। उसके शब्दों से पता चलता है कि इसी के लिए उसने पाप के सुखों को त्याग दिया है। अब अगर इस भाई को पिता के उपहारों में हिस्सा लेना है तो बड़ा बेटा समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह अपने भाई के द्वारा किए गए उपकार से नाराज है। वह साफ तौर पर दिखाता है कि अगर वह पिता की जगह होता तो वह उड़ाव पुत्र को स्वीकार नहीं करता। वह उसे भाई के रूप में भी स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे तेरा बेटा कहकर ठंडे दिमाग से बोलता है। फिर भी पिता उसके साथ कोमलता से पेश आता है। वह कहता है, बेटा तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तेरा है। अपने भाई के बहिष्कृत जीवन के इन सभी वर्षों में क्या तुम्हें मेरे साथ संगति का सौभाग्य नहीं मिला? वह सब कुछ जो बच्चे की खुशी में सहायक हो सकता स्वतंत्र रूप से उनके थे। बेटे को उपहार या पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। आपको केवल मेरे प्यार पर विश्वास करना है और उस उपहार को स्वीकार करना है जो स्वतंत्र रूप से दिया गया है। एक बेटा कुछ समय के लिए घर से अलग हो गया था क्योंकि उसे पिता का प्यार समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वह वापस आ गया है और खुशी की लहर हर परेशान करने वाले विचार को बहा ले जाती है। यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है और खो गया था अब मिल गया है। क्या बड़े भाई को अपनी खुद की नीच कृतघ्न भावना को देखने के लिए लाया गया था? क्या वह यह देखने आया था कि यद्यपि उसके भाई ने दुष्टता की थी फिर भी वह उसका भाई था? क्या बड़े भाई ने अपनी ईर्ष्या और कठोरता के लिए पश्चाताप किया? इस बारे में मसीह चुप था क्योंकि दृष्टांत अभी भी अभिनय कर रहा था और यह तय करना उसके श्रोताओं पर निर्भर था कि परिणाम क्या होना चाहिए। बड़े बेटे के द्वारा मसीह के समय के पश्चाताप ना करने वाले यहूदियों का प्रतिनिधित्व किया गया था और हर युग के फरीसी भी, जो उन लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं जिन्हें वे चुंगी लेने वाले और पापी मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं दुराचार में बहुत अधिक नहीं गए हैं, वे आत्मधार्मिकता से भरे हुए हैं। मसीह ने इन निंदा करने वालों का उनके ही आधार पर सामना किया। दृष्टांत में बड़े बेटे की तरह उन्हें परमेश्वर से विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने परमेश्वर के घर में पुत्र होने का दावा किया, लेकिन उनमें मजदूरी की भावना थी। वे प्रेम से नहीं बल्कि पुरस्कार की आशा से काम कर रहे थे। उनकी नजर में परमेश्वर एक सख्त कार्यपालक था। उन्होंने देखा कि मसीह चुंगी लेने वालों और पापियों को अपने अनुग्रह का उपहार मुफ्त में प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वह उपहार जिसे रबी केवल या धार्मिक शिक्षक केवल परिश्रम और तपस्या से प्राप्त करने की आशा करते थे, और वे नाराज हो गए। उड़ाव पुत्र की वापसी, जिसने पिता के हृदय को खुशी से भर दिया, ने उन्हें केवल ईर्ष्या के लिए उकसाया। दृष्टांत में पिता का बड़े बेटे से झगड़ा फरीसियों के लिए स्वर्ग की कोमल अपील थी। वह सब जो मैं चाहता हूं वह है, मेरे पास जो है वह तेरा है। मजदूरी के रूप में नहीं बल्कि उपहार के रूप में, उड़ा पुत्र की तरह आप इसे केवल पिता के प्रेम के अप्रतिष्ठित उपहार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग लगातार सवाल करते रहते हैं कि मैं किस चीज के साथ यहोवा के सामने आऊं और अपने आप को महान परमेश्वर के सामने झुकाऊं। क्या मैं होम बलि लेकर उसके सामने आऊं और एक वर्ष के बछड़े लेकर आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा या तेल की लाखों नदियों से? लेकिन वह कहता है, परमेश्वर कहता है अपने वचनों में, हे मनुष्य, उसने तुझे बता दिया है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे क्या चाहता है, सिवाय इसके कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6:6-8 में यह प्राप्त होती है। यह वह सेवा है जिसे परमेश्वर ने चुना है, दुष्टता के बंधनों को तोड़ना, भारी बोझों को उतार फेंकना और सताए हुए लोगों को स्वतंत्र करना और हर एक जुआ तोड़ डालना और अपने आप को अपने शरीर से ना छिपाना। यशाया 58:6-7 में हम पाते हैं इसे। जब आप खुद को पापी के रूप में देखते हैं जो केवल अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम से बचाए गए हैं, तो आपको उन लोगों के लिए कोमल दया आएगी जो पाप में पीड़ित हैं। आप अब दुख और पश्चाताप को ईर्ष्या और निंदा के साथ नहीं देखेंगे। जब आपके हृदय से स्वार्थ की बर्फ पिघल जाएगी तो आप परमेश्वर के साथ सहानुभूति में होंगे और खोए हुए लोगों के उद्धार में उसके आनंद में सहभागी होंगे। यह सच है कि आप ईश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर यह दावा सच है तो यह आपका भाई है जो मर गया था और फिर से जीवित हो गया है और खो गया था और मिल गया है। वह आपके साथ सबसे करीबी रिश्तों से बंधा हुआ है, क्योंकि ईश्वर उसे एक बेटे के रूप में पहचानता है। उसके साथ अपने रिश्ते को अगर आप नकारते हैं और आप दिखाते हैं कि आप घर में एक मजदूर हैं, ईश्वर के परिवार में एक बच्चे नहीं, यदि आप उसे नकारते हैं तो यह दिखलाता है। हालांकि आप खोए हुओं को बधाई देने में शामिल नहीं होंगे, लेकिन खुशी जारी रहेगी। बहाल हुए व्यक्ति को पिता के पास और पिता के काम में अपना स्थान मिलेगा। जिसे बहुत क्षमा किया गया है वही बहुत प्रेम करता है, लेकिन आप बाहर अंधेरे में रहेंगे, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यह वचन 1 यूहन्ना 4:8 में हम पाते हैं। इस दृष्टांत में बड़े भाई के द्वारा हम पाते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के पापियों को क्षमा करने के कार्य में आनंदित होने की जगह उन पापियों से ईर्ष्या करते हैं। हम बड़े भाई के समान ईर्ष्या करने के जगह परमेश्वर के कार्य में आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए मदद करे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम तुझसे आशीष मांगते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए, इस संवाद के लिए कि तू हमें पश्चाताप करने के लिए कहता है और चाहता है कि हम मन फिराए और तेरे पास आए, और यह भी चाहता है कि हम अपने भाइयों से प्रेम करें जैसा तूने हमको प्रेम किया है, हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा करना चाहता है। तो दूसरों को भी क्षमा करना चाहता है पिता। हम दूसरे पापियों से जिसे तू क्षमा करता है हम ईर्ष्या ना करें, पर तेरे दया और तेरे करुणा में आनंदित हो कि तू हम जैसे दूसरों को भी क्षमा करता है और तेरे राज में पहुंचाना चाहता है।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।